वाणी चल रही थी 18/7/2000 की। बाबा ने पूछा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो? तीसरा नेत्र माना बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र खुला है? कोई के रूप को देखते हो तो उसका वो आत्मरूप अनेक जन्मों का दिखाई पड़ता है? क्योंकि इन आंखों से तो आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई नहीं पड़ते, इन आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। जिसका बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र खुला होगा, दिव्य चक्षु कहो दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र कहो, उस तीसरे नेत्र से जिसने उसको पहचाना होगा तो पहचान सकता है, बाकी इन आंखों से समझ में नहीं आ सकता है। ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है, या परमात्मा है, या धर्मात्मा है, ये आंखें नहीं पहचान सकती। इसलिए पूछा, ऐसे त्रिनेत्री बने हो, तीसरा दिव्य बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुला है और त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों काल को जानने वाले, भविष्य को भी जानने वाले, वर्तमान को भी जानने वाले, पास्ट को भी जानने वाले, अपने तीनों कालों को भी जानने वाले, और जो भी आत्मा सन्मुख आते हैं उनके तीनों कालों का बोध हो जाता है, सौ परसेंट में सही, कुछ परसेंट में भी हो जाता है, अगर कुछ परसेंट में भी हो जाता है तो भी त्रिकालदर्शी कहेंगे। मनुष्य तो कोई त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना नहीं सकता, कौन बना सकता है? जो खुद होगा वो दूसरों को बनाएगा, खुद ही नहीं होगा तो दूसरों को कहां से बनाएगा? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बाप ही आकर के बनाते हैं। त्रिनेत्री बाप का रूप क्या दिखाया गया है शास्त्रों में चित्रों में? जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनके बीच में त्रिनेत्री बाप का रूप क्या है? कौन से देवता का रूप दिखाया गया है त्रिनेत्री? शंकर को दिखाते हैं, कहते भी है उनको तुम आदि देव है, तुम आदि देव हो, देवताओं के भी आदि हो, तो सबका पिता हुआ ना, वो त्रिनेत्री बाप आकर के बच्चों को त्रिनेत्री बनाते हैं, और कोई नहीं बना सकता। तुमों को भी बनाने वाला बाप है, कौन बाप? किसका बाप? ऐसे नहीं सिर्फ देवताओं का ही बाप है, एक ही देवता ऐसा है जो आसुरी आत्माओं के प्रति ही कल्याण की दृष्टि रखता है, उनको भी वरदान दे देता है, और देवात्माओं को भी वरदान दे देता है। अगर कोई बिगड़े हुए हैं तो उनके प्रति शुभ भावना है उसके दिल में। बाप ऐसा होता है जो अपने बिगड़ेल बच्चे के प्रति शुभ भावना न रखता हो? होता है कोई बाप? बाप का संबंध ही ऐसा होता है बच्चे के प्रति कि वो बच्चे का हर हालत में सुधार चाहता है, अपने बच्चे को अपने से भी ऊंची देखना चाहता है। तो बोला तुमको भी बनाने वाला बाप है। किसको? उनको नहीं, तुमको। क्यों? हाँ, ऐसे तो सारी दुनिया 500 करोड़ की दुनिया परमात्मा बाप के बच्चे हैं, लेकिन 500 करोड़ की दुनिया परमात्मा बाप के सन्मुख आकर के सुनने का साहस नहीं करती या पुरुषार्थ नहीं करती। लेकिन तुम बच्चे, तुम बच्चों में ये विशेष सिफ्त है कि तुम बाप को पहचान करके बाप के सन्मुख आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनने का साहस करते हो, हिम्मत करते हो। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो। क्या? जब तक नास्तिक है, नास्तिक मन आस्था और नास्था, आस्तिक और ना आस्तिक, के अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भावना नहीं है, तो वो प्राप्ति नहीं कर सकता। श्रद्धावान लवते ज्ञानम। तभी क्या बोला? जो श्रद्धावान है वो भगवान का ज्ञान लाभ कर सकता है, भगवान के ज्ञान से लाभ ले सकता है, और अश्रद्धालु है, अंदर से उसके अंदर कानी आंख भरी हुई है, मन में राम बगल में छुरी, तो प्राप्ति। इसलिए बोला आस्तिक हो तो त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनते हो, आस्तिक नहीं हो, आस्था नहीं है, तो न त्रिकालदर्शी बनेंगे और न त्रिनेत्री बनेंगे। सारा ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। मूल वतन, मूल माना जड़, शुरुआत कहाँ से होती है, मूल रूप में हम आत्मा क्या थे, मूल रूप में हम आत्मा निसंकल्प स्टेज में थे। जैसे हमारा बाप, उसको कोई संकल्प विकल्प पैदा नहीं होता। हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो निराकारी है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, ऐसी स्टेज में हम बच्चे भी टिकेंगे। मूल वतनवासी थे, निसंकल्पी स्टेज थी हमारी, कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या, तो संकल्प उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे मूल वतन और उसके बाद नीची स्टेज वाला है सूक्ष्म वतन। ऐसा वतन जहाँ आत्मा सूक्ष्म संकल्पों में रमण करती है, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म गहराइयों में रहती है, जहाँ से आत्मा के अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है, इस शक्ति के अनेक प्रक्रियाओं का साक्षात्कार हो जाता है। शक्ति कैसे आदि मध्य अंत में घूमती है, चक्र काटती है, उस 84 के चक्र में हमारी आत्मा कैसे कैसे चक्र लगाती है, ये सुख मनन चिंतन मंथन देह की स्मृति के बगैर जिस स्टेज में चलता है वो है सूक्ष्म वतन। हमारी आत्मा उस सूक्ष्म वतन में रमण करती है सूक्ष्म संकल्पों में, और उसके बाद नीची स्टेज वाला है साकार वतन, जहाँ 84 का चक्र चलता है। आत्मा 84 जन्म के चक्र में भ्रमण करती है, 84 जन्म लेती है, 84 चोले धारण करती है, उस साकारी स्टेज में जब हम रहते हैं अनेक जन्म तो वो है साकार वतन। वो सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, फिर पीछे और धर्म आते वो 84 के चक्र में, शुरुआत में सिर्फ एक ही धर्म और बाद में फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे तुम्हारे धर्म की आत्मा वृद्धि को पाती रहती है, वैसे और धर्म की आत्माएं भी वृद्धि को पाती है, लेकिन तुम्हारी संख्या कम हो जाती है और उन बाद में आने वाले दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आत्माएं जितनी जाति जन्म लेती है उतनी जाति कमजोर बन जाती है। ज्यादा सुख भोगने से, शरीर के जन्म लेकर ज्यादा सुख भोगने से, आत्मा रूपी बीज अनेक जन्म लेने से उसकी शक्ति छीन हो जाए। जैसे कोई बीज होता है, मान लो कोई नया बीज की किस्म निकली और वो बीज धरणी में 4-6 बार बोया गया, तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी शक्ति, उसका पौधा, उसका फल कम शक्ति वाला होता जाएगा या उतनी ही शक्ति बनी रहेगी? शक्ति कम होती जाएगी, पैदाइश उसकी कम होती जाएगी, उसमें जो शिष्ट है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा भी जब शक्ति रूपी रंगमंच पर आकर के अनेक जन्मों का पार्ट बजाती है तो अनेक जन्मों में शारीरिक सुख भोगते भोगते, कर्म इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए शुरुआत में जब पहले सत्युग में आत्माएं थी तो लंबी उम्र होती थी, अभी कलयुग में आकर के 30-40 वर्ष एवरेज एज रह गई, पेट में भी बच्चा मर पड़ता है, शक्ति आत्मा में रहती नहीं, अकाले मौत होने लग पड़ती है। तो ये आत्मा की शक्ति अनेक जन्म के सुख भोगने से अशक्ति में आती है। अब जो आत्माएं बहुत पुरानी है, जैसे सनातन धर्म देवता धर्म की जिन्हें हिंदू धर्म कहा जाता है, तो वो तो सबसे पुरानी है, पहले तो एक ही धर्म था, उन्होंने बहुत जन्म लिए, बहुत जन्मों के सुख भोगे, इसलिए द्वापर युग से जब द्वैत फैलाने वाले दूसरे धर्म आते हैं, आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, ये आकर के अपने अपने धर्म फैलाते हैं, तो जो नए धर्म की आत्मा आती है वो सात्विक होती है, सत्व प्रधान होती है, बीज रूप स्टेज वाली होती है, और हम देह का सुख भोगते भोगते देवान में आ जाते, इसलिए हम जल्दी से उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाते, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते। तो कोई किसी की बात से प्रभावित हो जाए मैंने उसकी प्रजा हो गई। इसलिए हमारे धर्म की संख्या क्षीण होती जाती है। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं, जो भी नए धर्म आते गए, वो देवता धर्म की आत्माओं को अपने प्रभाव में लेते गए और कन्वर्ट करते गए। हिस्ट्री में हमेशा यही देखा होगा कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे धर्म वाले कभी हिंदू नहीं बने, वो अपने धर्म के पक्के रहते। इसलिए हिंदू धर्म सबसे पुराना होते हुए भी, ये देवी देवता सनातन धर्म सबसे पुराना होते हुए भी इसकी जनसंख्या कम क्यों रह गई? दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्मों की जनसंख्या को बढ़ाते रहे। तो बोला और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं, नए धर्म स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। क्यों? गुरु तो सदगति के लिए होता है। वो आए तो उनके पीछे पीछे उनके जो फॉलोअर्स दूसरी आत्माएं आई, वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के नीचे गिरती गई, और जो कन्वर्ट हो गए उनके धर्म में अपने देवता धर्म के, वो भी कन्वर्ट होने के बाद नीचे गिरते गए। तो दुर्गति हुई कि सदगति हुई? दुर्गति हुई। तो गुरु पाएंगे, इसलिए बोला कि उनको गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही है, इसलिए कहते हैं एक ओंकार सदगुरु अकाल हो। सिख लोग क्या कहते हैं? एक ओंकार सदगुरु, सदगुरु एक है और गुरु अनेक है। सत्य गुरु माने सच्चा गुरु एक है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे हो गए, उसमें इब्राहिम बुद्ध कहे थे गुरु नानक सब आ गए, तो वो सब हुए झूठे गुरु। वो वास्तव में सदगति नहीं करते हैं। सदगुरु करने वाला, सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही बात है। वो धर्म पिताएं कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, उनके आने के बाद तो उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं और देवता धर्म की आत्माएं भी नीचे गिरती जाती है। वो धर्म स्थापक तो है क्या? धर्म की अपने अपने धर्म की धारणाओं की स्थापना तो करते हैं, लेकिन लेकिन सदगति नहीं करते क्या? सच्ची गति किसी की नहीं करते। सच्ची गति क्या होती है और दुर्गति क्या होती है? एक होती है सदगति, एक होती है दुर्गति। तो उनके आने के बाद मनुष्य सृष्टि की दुर्गति तो होती जाती है, लेकिन सदगति नहीं होती। दुर्गति का मतलब है दुष्ट संकल्प तो बढ़ते जाते हैं हर मनुष्य आत्मा के अंदर, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। पहले तो संकल्प सुधरे, संकल्प रूपी बीज सुधरे, तो सदगति की ओर उन्मत्त हुआ मनुष्य। जब संकल्प रूपी बीज ही नीचे गिरता जाता है तो दुर्गति की शुरुआत वहीं से होगी। इसलिए बताया कि वो धर्म स्थापक हैं, उनके द्वारा कोई सदगति थोड़ी होगी। क्राइस्ट को याद करने से सदगति होगी क्या? उसको जो सदगति करने वाला सदगुरु है उसको याद करेंगे तो हमारी सदगति होगी। चोर को याद करेंगे तो चोरी के गुण आएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आएंगे, धर्मात्मा को याद करेंगे तो धर्म की गुण बढ़ेंगे। परमात्मा सदगति दाता है, उस सदगति करने वाले को याद करेंगे तो हमारी सदगति होगी। क्राइस्ट को याद करने से थोड़ी होगी, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो रही होंगे। विकर्म भस्म किसको याद करने से होंगे? जिसके अपने खुद के पाप कर्म भस्म हुए पड़े हो, खुद के जिसके भस्म हुए नहीं पड़े हैं, तो दूसरों को भस्म कैसे कराएगा? उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा, इनको धर्म पिताओं को, जो भी देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं हैं उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। क्यों? क्योंकि एक से आता है ज्ञान और अनेकों मनुष्य गुरुओं से आता है अज्ञान। भक्ति भक्ति है अज्ञान की अंधेरा और ज्ञान है सवेरा। ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा बाप से आता है, वो जब तक इस सृष्टि पर तीसरा नेत्रधारी न आए तब तक इस सृष्टि में किसी का तीसरा नेत्र खुल नहीं सकता। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो तो तुम पंडे बन सकते हो। पंडों का काम क्या होता है? तीर्थों पर ले जाना, यात्रा कराना। वो तीर्थ यात्रियों की बात नहीं है। सच्चे सच्चे पंडे तो तुम हो जो आत्माओं को सच्चा रास्ता बताते हो। बताया सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाले तुम पंडे हो। बाप भी लिबरेटर है, वो गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकल विनाश होंगे। क्या कहा? उस बाप को मुरली किसके तन में बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बोल रहा है। तो इस बाप क्यों नहीं कहा? या मैं बाप ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय जो पाठ चल रहा था ब्रह्मा के तन में, वो माँ के रूप में पाठ चल रहा था। जैसे छोटे छोटे बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जाती है, बेसिक नॉलेज में गहराई की बातें थोड़ी बताई जाती है। जो असली ज्ञान का तत्व है वो तत्व ज्ञान बच्चों को थोड़ी दिया जाता है। बच्चों की बुद्धि जब विकसित हो जाए, विशाल बुद्धि हो जाए, तो उनको गहराई की बातें बताई दें। वही आप गुह्यतरम ज्ञानम गुह्य से गुह्य रात समझाता हूँ। तो गुह्यता की बात छोटे बच्चे थोड़ी समझते। तो वो माँ की नानी थी इसलिए बताया। उस बाप को याद करो जो तुम्हारी बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को खोलने वाला है। उसको याद करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। क्या? एक तरफ हम पाप कर्मों को भस्म करने का पुरुषार्थ करते रहे, याद में बैठे, दूसरी आत्माओं को ज्ञान भी दे, दिव्य गुण धारण भी करें, और दूसरी तरफ हमसे विकर्म भी पाप कर्म भी होते रहे, तो रिजल्ट क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। रिजल्ट हमारा अच्छा अच्छा नहीं आएगा। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो फिर 100 गुना होता जाएगा। दुनिया में दुनिया वाले जो पाप कर्म करते हैं उनको 1 गुना दंड मिलता है, 1 पाप का। और जो ज्ञान में चलने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, ये अंजाम करने के बाद कि हमने बाप को पहचान लिया है और अब हम देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे, और फिर भी बाप को ब्लफ देते, धोखा देते और फिर उल्टे कर्म करते हैं, तो उनको 100 गुनी सजा मिलती। क्या? दुनिया वालों को 1 पाप की 1 गुनी सजा, और जो बाप के बच्चे बनकर के भी दुनिया को तो बताते हैं कि हमको भगवान बाप मिल गया, खुद भी अंजाम करते हैं और फिर उल्टे कर्म करते हैं, तो उनको 100 गुनी सजा मिलती है। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, ना अपना भर से कहिए, प्रयास करो कि हमसे कोई विपरीत कर्म न हो जाए। बाप जैसा कर्म कराना चाहता है वैसा ही कर्म हो, नहीं तो एडिशन भी होगी। पाप कर्मों का बोझा ऐड होता जाएगा और नाम भी बदनाम करेंगे। किसका नाम बदनाम करेंगे? अपना नाम तो बदनाम हो गई, लेकिन इनको पढ़ाने वाला कौन है? ये किसके बच्चे हैं? ये कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, और कर्म इनके ऐसे दुखदाई है, दुख देने की व्यक्ति है, तो क्या रिजल्ट होगा? भगवान की प्रत्यक्षता करने वाले हुए या भगवान का नाम गुम करने वाले हुए? नाम बदनाम कर देंगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए ना, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, लख का चोर तो लख का चोर, पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। کیا سب سے بڑی چوری کی بات کون سی بتائی؟ سب سے بڑی چوری کی بات تو یہ بتائی کہ ہم دنیا کو کہتے ہیں ہمیں بھگوان باپ ملا ہے برہما کے دوارا, ہم برہما پتر ہیں, برہما کمار اور برہما کماری ہیں. تو جب آپس میں برہما کمار اور برہما کماری ہو گئے, برہما اس سرشتی پر آ گیا اور نئی سرشتی رہتے رہا ہے, تو ہم آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہوئے. جب بھائی بہن ہوئے تو بھائی بہنوں کی کرمنل آئی جانی چاہیے, کرمنل احسان تو ہونا چاہیے. بھائی بہنوں کے لیے تو بڑا دھیان دینا چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی بہن ہیں. باپ بچوں کی چلن سے سمجھ جاتے, کبھی خیال بھی نہ آئے کہ یہ ہماری استری ہے. استری پروش مان لو دونوں گیان میں چل رہے ہیں, اور مندر میں جا کر کے جو سچا مندر ہے جہاں بھگوان پڑھائی پر آ رہا ہے, بھگوان کا جو اصلی اصلی گھر ہے, اس میں جا کر ہم یہ انجام کر آئے کہ ہم برہما کی اولاد ہیں. واسطو میں ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمیں ایشوری گیان مل رہا ہے برہما کے دوارا, ہم براہمن بن چکے, برہما کی اولاد, براہمن ہیں, براہمنی ہیں. وہ تو بھکت مندروں میں جاتے ہیں صرف ہاتھ جوڑ کر کے کہہ دیتے ہیں تمہیں وہ ماتا یا پتا, تمہیں تم ہی ہمارے ماتا ہو, تم ہی ہمارے پتا ہو. استری پروش دونوں جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ آتے ہیں, کہہ آتے ہیں, لیکن کیا ان کے دل میں آتا ہے کہ ہم ماتا پتا کے بچے ہیں, آپس میں بھائی بہن ہیں؟ ان کے دل میں آتا ہے, ان کے دل میں بھی نہیں آتا. لیکن ہمارے تو دل میں یہ پریکٹیکل بات بیٹھ گئی. کیا بات بیٹھ گئی؟ کہ ہم کو بھگوان باپ ملا ہے اور ہم بھگوان باپ کے پریکٹیکل میں بچے بن چکے. ہم برہما کمار ہیں اور برہما کماری ہیں, بھلے پورو جنم میں ہم پتی پتنی تھے, لیکن اب ہمیں دیوی نیا جنم مل چکا ہے, تو ہم برہما کمار, برہما کماری مانا براہمن اور براہمنی آپس میں بھائی بہن بن چکے. یہ ہمارے اندر کی سمجھنے کی بات ہے, دوسروں کو بول کر کے سنانے کی بات نہیں ہے. کیا کہا؟ مندر میں جاتے ہیں بھکتی مارگ میں, تو وہاں تو ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں پتی پتنی دونوں, کیا کہتے ہیں؟ تمہیں ماتا, تم ہی ہمارے ماتا ہو, تم ہی ہمارے پتا ہو. جب تم ہی ہمارے ماتا پتا ہو تو ہم آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بہن. وہاں تو یہ دھیان میں ہی نہیں آتا کہ ہم بھائی بہن ہیں, لیکن یہاں تو تیسرا نیتر ہمارا کھول دیا نا, تو یہاں تو ہماری بدھی میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہم واسطو میں نئی سرشتی کے رچیتا براہمن بن چکے ہیں, آپس میں بھائی بہن ہیں. ہماری نرویکاری درشتی رہنی چاہیے, یہ ہماری استری ہے, یہ خیال بھی نہ آنا چاہیے. یہ اندر کے خیال رکھنے کی بات ہے, دوسروں کو کہہ کر کے سنانے کی بات نہیں ہے. ہم برہما کمار کماری ہیں اور ہم شیو بابا کے پوترے ہیں, برہما کے بچے. پرجاپتا برہما کے کیا ہوئے؟ بچے ہیں. اور پرجاپتا برہما کا بھی باپ کون؟ شیو بابا. تو وہ ہمارا ہو گیا بابا. تو ہم پوترے ہیں, ہم نے بابا سے پرتیجا کی ہے, راکھی باندھی ہے, پھر ہماری آنکھیں دھوکھا کیوں دیتی ہے؟ کیا یہ اصلی رکشا بندھن ابھی ہم نے اپنایا ہے؟ وہ تو بھکتی مارگ میں براہمن آ کر کے راکھی باندھتے تھے گھروں گھروں میں, اس سے کوئی وکاروں سے رکشا تو ہوتی نہیں تھی. ابھی تو بھگوان باپ آ کر کے ہم کو برہما بن کر کے ہم کو رکشا کے بندھن میں سوتر میں باندھ رہا ہے, وکاروں سے ہماری رکشا کر رہا ہے, راکھی باندھی ہے, پھر یہ آنکھیں دھوکہ کیوں دیتی ہیں؟ یاد کے بل سے کوئی بھی کرمندیوں کے دھوکے سے چھوٹ سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ یاد من. پہلے اپن کو جیوتی بندو آتما سمجھے, تو یہ کٹوتی ہو گئی دیوان کی. کیا کٹوتی ہوئی؟ ہم بھی جیوتی بندو آتما اور یہ بہن بھی جیوتی بندو آتما. تو بندو بندو آپس میں بھائی بھائی ہوئے یا بھائی بہن ہوئے؟ بھائی بھائی ہو گئے. تب جب بھائی بھائی سمجھتے ہیں, یہ دیہ تو مناسی ہے, مٹی کا پتلا ہے, آج ہے اور کل نہیں رہے گی. یہ استھتی جب ہماری پکی ہو جائے گی آدمی کی استھتی بھائی بھائی کی, تو یہ دیہ بھان ختم ہو جائے گا کہ یہ استری چولا ہے اور یہ پرش چولا ہے. تو پھر یاد کے بل سے کوئی بھی کرمندیوں کے دھوکے سے چھوٹ سکتے ہیں. یاد مانا. पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझे तो ये कटौती हो गई देवहन की। क्या कटौती हुई? हम भी ज्योति बिंदु आत्मा और ये बहन भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो बिंदु बिंदु आपस में भाई भाई हुए या भाई बहन हुए? भाई भाई हो गए। तब जब भाई भाई समझते हैं, ये देह तो विनाशी है, मिट्टी का पुतला है, आज है और कल नहीं रहेगी। ये स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी आत्मिक स्थिति भाई भाई की, तो ये देहभान खत्म हो जाएगा कि ये स्त्री चोला है और ये पुरुष चोला है। तो फिर याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए इस बात की। आत्मा समझे उस आत्माओं के बाप को याद करने की, एक बाप के डायरेक्शन पर अमल करके चार्ट लिखो। अगर दृष्टि जाती है स्त्री पुरुष की तो क्या करना चाहिए? चार्ट लिखना चाहिए। दिन में एक बार दृष्टि ऐसी गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, क्रमण लाई, जितनी बार होती है उतनी बार डायरी में नोट करनी चाहिए और नोट करके बाप को बताना चाहिए कि हमसे ऐसी ऐसी भूल हो रही है। डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए ना। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। कैसा वर्षा लेंगे? पूरा वर्षा गति सदगति का। गति माना? अरे पहले तो अपने संकल्पों की गति तो हो। संकल्पों की गति कहीं स्त्री पुरुष के वाइब्रेशन की तो नहीं चलती है? अगर स्त्री पुरुष के वाइब्रेशन की गति चलती है, देवान की गति चलती है, तो दुर्गति में है या सदगति में? तो दुर्गति में। तो गति और सदगति का हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ? हम यही इस जीवन में पढ़ाई, बाप जो हमें पढ़ाए रहे हैं उस पढ़ाई के आधार पर अपने मन के संकल्पों की गति को कैसा बना देंगे? निसंकल्पी स्टेज वाला बना देंगे। ये हमारी हो गई गति। टीचर से पूरा पढ़ेंगे क्या? पढ़ाई जो पढ़ाई बाप पढ़ाने आया है आत्माभिमानी बनाने की, वो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे? ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सकेगा जो बेहद की नॉलेज दे। हद के शारीरिक नॉलेज नहीं देने आया है। कौन सी नॉलेज देने आया? बेहद की नॉलेज देने आया है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले और कैसे इस नॉलेज को जान सकेंगे? क्या जो इस सृष्टि के आदि है लक्ष्मी नारायण, वो इस नॉलेज को नहीं जानते थे? उन्होंने खुद ही इस नॉलेज को पा करके नर से नारायण पद पाया है। तो ये बेहद के बाप के द्वारा दी हुई बेहद की नॉलेज है। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो और वो भी संगम युग पर जानते हो। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, चारों युगों में से कभी भी ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। ये सिर्फ संगम युग में, माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, उस संगम पर ही बाप आकर के खुद इस नॉलेज को देते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को बहुत समझाते, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठ करके बाहर जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में से निकल जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हाँ, बाहर जाने से बाहर की दुनिया का संग तरंग लग जाता है। अगर बुद्धि को एकाग्र रखे, खूब अच्छी तरह याद रखे, तो हो सकता है उतना संग तरंग न भी लगे। लेकिन 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है संग के रंग में आने की, इसलिए वो संग तरंग जल्दी खींच लेता है। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं ऐसे ऐसे करो, यह करो। यह बात बुद्धि में से उड़ जाती है कि बाबा हमको कहते हैं, दुनिया वालों को नहीं कहते। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। इनका, हाँ, इन ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो। लेकिन करते क्या है? अभी भी एडवांस वाले क्या करना चाहते हैं? ایڈوانس والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایڈوانس والے بھی چاہتے ہیں بابا کا فوٹو ہمارے پاس رہے. ارے جب زندہ ہے تو فوٹو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مر جانے کے بعد فوٹو رکھے تو وہ بھی چلے گا. ٹھیک بات ہے, جو زندہ ہے اس زندہ کا جو چیتنیہ چہرہ ہے وہ جتنا اچھا یاد آئے گا وہ جڑ چتر کو دیکھنے سے اتنا اتنے وائبریشن ملیں گے. جڑ چتر کو دیکھنے سے تو اتنے وائبریشن نہیں ملیں گے. تو بولا ان کا یہ فوٹو نہیں رکھو, یہ ہے رکھ تو لون لیا ہوا ہے. یہ کون سے رکھ کے لیے بولا؟ ایک ٹیمپریری رکھ بتایا اور ایک مقرر رکھ بتایا. ٹیمپریری رکھ وہ جو نہ آدھے میں تھا نہ انت میں رہے گا, اور مقرر رکھ وہ جو آدھے میں بھی تھا اور انت میں بھی رہے گا. تو بولا یہ رکھ تو لون لیا ہوا ہے. کون سا رکھ؟ جو دادا لیکراج برہما کے تن میں آئے وہ رکھ تو لون لیا ہوا ہے. یہ بھی پرسارتھی ہے, یہ بھی کہتے ہیں میں بابا سے ورثہ لے رہا ہوں. تمہارے سدسیہ یہ بھی اسٹوڈینٹ لائف میں ہے کیا کہا؟ یہ ہے مانا کون کشن کی سول؟ کشن کی سول ابھی کیا ہے, پڑھائی پڑھنے والی ہے یا پڑھائی پڑھانے والی ہے؟ ابھی بھی پڑھائی پڑھنے والی ہے. وہ بھگت لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کرشن کی سول ہم کو دادی گلزار دادی میں آ کر کے پڑھائی پڑھاتی ہیں, وہ بھگوان کا روپ ہے. تو کس کو بھگوان سمجھتے ہیں؟ گیتا کا بھگوان کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ تو کرشن کو گیتا کا بھگوان سمجھتے ہیں. اور تمہاری بدھی میں یہ ہے کہ کرشن کی سول گیتا کا بھگوان نہیں ہے, سین نراکار پرم پتا پرماتما جو نراکار اسٹیج والا ہے وہ ہم کو گیتا کا گیان دے رہا ہے. تو یہ اسٹوڈینٹ لائف میں ہے, یہ ہمارا کون کشن کی سول. آگے چل تمہاری مہما ہوگی. کب مہما ہوگی؟ جب تم یہ سدھ کر کے بتاؤ گے کہ گیتا کا بھگوان شری کرشن نہیں ہے, گیتا کا بھگوان نراکار پرم پتا پرماتما شیو شنکر کے تھرو ہے. دنیا نے شیو اور شنکر کو ملا کے ایک کیا ہے, کسی دوسرے دیوتا کے ساتھ شیو کا نام ایڈ نہیں کیا. کیوں؟ ضرور شنکر کی سول نے یاد کا پرسارتھ کر کے اس کے باپ کے سمان اپنی اسٹیج کو بنایا ہے. جو باپ کی اسٹیج وہ اس بچے کی اسٹیج بنی ہے سب سے پہلے, اس لیے شیو اور شنکر کو ملا کے ایک کر دیتے ہیں. شیو برہما کو ملا کے ایک نہیں کیا, شیو وشنو کو ملا کے ایک نہیں کیا, یا کسی بھی دیوتا کے ساتھ شیو کو نہیں ملایا. کس کے ساتھ ملایا؟ شیو کو شنکر کے ساتھ ملایا. دنیا میں بھی کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اینڈ سنس کمپنی لکھتے ہیں. تو باپ کے ساتھ بڑے بچے کا نام تو ایڈ ہو سکتا ہے, بڑا بھائی باپ سمان کہا جاتا ہے. ویسے بھی جتنی بھی راجائیاں ہوئی ہیں ان راجائیوں کی پرمپرا میں راجاؤں نے اپنے چھوٹے یا مجھلے بچے کو راجائی دی ہے یا بڑے بچے کو دی ہے؟ کیوں دی ہے بڑے بچے کو؟ ایک لمبے سمے کی پیورٹی کی پاور سے بڑا بچہ پیدا ہوتا ہے. ساری زندگی کی جو پیورٹی کی پاور ہے وہ اکٹھی ہوئی پڑی اور اس پیورٹی کی پاور سے پہلے بچے نے جنم لیا, تو اس میں وہ پیورٹی کی پاور ہونے کے کارن اس میں راجائی چلانے کی طاقت زیادہ رہتی ہے. اس لیے بتایا کہ یہ بھی اسٹوڈینٹ لائف میں ہے, آگے چل کر کے تمہاری مہما ہوگی. جب آگے چل کر کے تم یہ سدھ کرو گے کہ گیتا کا بھگوان کرشن کی سول دادا لیکھ راج بھگوان کا روپ نہیں ہے, بھگوان کا روپ کون ہے؟ ہاں شیو بابا ہے. ابھی تو تم پوجی دیوتا بننے کے لیے پڑھتے ہو, کیا ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم پڑھائی پڑھ رہے ہو, بنے نہیں ہو. لیکن مہما کب ہوگی؟ جب پوری پڑھائی پڑھ کر کے تم وہ کس کرسی پر سیٹ ہو جاؤ, دیوتاؤں کی کرسی پر. تمہاری کرم دیکھ کر کے, تمہاری درشتی دیکھ کر کے, تمہاری ونتی دیکھ کر کے, تمہاری واچا دیکھ کر کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ دیوتا ہے, دینے والا ہے, ہم سے کچھ لینے والا نہیں ہے. دیوتا کسے کہا جاتا ہے؟ जो देने वाला हो, कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा न करने वाला हो, लेता भी न हो। तो बोला अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, अभी क्या कर रहे हो सर? अभी सिर्फ पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन देवता की सीट पे सेट नहीं हुए। फिर सत्युग में तुम देवता बनेंगे, जब युग पलट होता है तब तुम क्या बन जाएंगे? देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप की कोई समझा ही नहीं सकता। क्या बातें? कि जब सत्युग आएगा तब वो देवता बनेंगे, अभी तो सत्युग आया ही नहीं। तो देवता की सीट में सेट होकर के दिखाने की क्या जरूरत? लेकिन सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये समय का नाम है। समय जड़ होता है या चैतन्य होता है? समय तो जड़ है, चैतन्य तो नहीं है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? चैतन्य में नहीं ना, जड़ में। चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत होती है। तो उस जड़ युग को भी परिवर्तित करने वाली आत्मा है या जड़ युग आत्मा को परिवर्तन करेगा? जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो पहले अपने को परिवर्तित करके फिर सत्यु को लाएंगी। उनके आधार पर सत्यु आएगा, सत्यु अपने आप नहीं आएगा। तो जो उठे सो अर्ग, जो करके दिखाए सो पहला नंबर। तो सत्यु अपने आप नहीं आएगा, युग परिवर्तन अपने आप नहीं होगा, जरूर कोई निमित्त बनेगा। सत्यु सत्य का युग लाने के जरूर उसको झूठ से टक्कर लेनी पड़े। सत्युग ऐसे ही आ जाएगा क्या? सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? एक सत्यनारायण की कथा होती है तो जरूर एक सत्यनारायण को सारी दुनिया जो झूठ है उसे टक्कर लेनी पड़ी होगी ना। तो हम बच्चे भी नंबर वन सत्यनारायण के बच्चे हैं, हमको भी क्या करना पड़े? झूठ की दुनिया से कुछ न कुछ तो हमें मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये बात कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। कौन सी बात? कि सत्युग में फिर तुम देवता कैसे बनेंगे? अभी तो कलयुग है, तकदीर में नहीं है, तो फिर संशय उठता रहेगा। क्या बात? ज्यादा ज्यादा संशय आते हैं तो अंदर में क्या समझना चाहिए? कि हमारी तकदीर खोटी है, इसलिए हमको बार बार ईश्वरीय ज्ञान में संशय आते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, गीता में भी, संस्कृत गीता में भी, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो बार बार संशय लाना ये हमारी आत्मा को कमजोर बना देता है। आत्मा पावरफुल कब बने? जब हमारी आत्मा निश्चयात्मक बुद्धि वाली बने, ध्रुव तारे की मिसाल हम अटल बन करके रहे, सारी दुनिया हमारे चारों ओर घूमे, हम सारी दुनिया के चारों तरफ में घूमने लग पड़े, दूसरों की बातों से प्रभावित न होने लग पड़े, बाप जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है हम उन बातों के ऊपर पैदा होने वाले बने। तो तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर के पढ़ाएंगे? क्या संशय आता है कि भगवान ही सृष्टि पे कैसे आगे पढ़ाएगा? मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि भगवान कोई मनुष्य तन में आकर के पढ़ाता होगा? मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? याद करने की बात ही वहां से कट हो जाती है। कहां से? जहां संशय पैदा हुआ कि ये बाप नहीं है, या बाप नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता, भगवान बाप कैसे आके पढ़ाई पढ़ाएगा? तो वहां से याद भी खत्म हो जाती है, विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। जब याद नहीं करेंगे तो पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे। ये सारी नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है। क्या बात? संशय बुद्धि जितने जाति बनते रहेंगे राजधानी में नीचा नंबर पाते रहेंगे। राजधानी में तो राजा होता है, राजा के बाद रानी होती है, फिर उसके बाद
बड़े बड़े अहदेदार होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सेनापति होता है, महाअमात्य होता है, तो राजधानी अकेले से थोड़ी चलती है। तो सूर्यवंश की राजधानी मानो स्थापन हुई, पहले नंबर की राजधानी, तो उसमें हमारा पद कहाँ जाएगा? अगर जाति संशय आते रहेंगे तो हमारा पद जाति नीचा हो जाएगा। तो राजधानी स्थापन हो रही है, दासदासी भी तो चाहिए, क्या कहा? दासदासी कौन बनेंगे? जो ज्यादा संशय बुद्धि होते रहे उनका पद विनश्चिंती होता रहता है। एक बार संशय पैदा हुआ, मरगा नीचे गिर गया, दूसरी बार संशय पैदा हुआ, फिर मरगा नीचे गया। ऐसे जितना जितना संशय बुद्धि बनते जाते हैं उतना उतना मरगा माला में नीचे गिरता जाता है। चाहे वो फर्स्ट क्लास 108 की माला हो, चाहे वो सेकंड क्लास 16108 की माला हो, और चाहे वो थर्ड क्लास 9 लाख की माला हो। 9 लाख का हार भी तो होता है ना, तो उसमें पद नीचे होते जाएंगे, दास दासियां भी तो बनेंगे ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, क्या? जो राजाएं बनते हैं उन राजाओं को दास दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में फिर कितनी होंगी? बड़े बड़े घरानों में यहाँ ही इतनी इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में फिर कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर के बनना पड़े। कैसा ढीला पुरुषार्थ? बाबा से पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो? बाबा अभी हम मर जावे तो क्या पद पावेंगे? क्या पूछ सकते हो? अभी हम मर जावे तो क्या पद पावेंगे? पूछता कोई नहीं, कोई पूछता है? कोई मरना नहीं चाहता। जीते जी मरना तो चाहिए, ऐसे हो गए नहीं मरना चाहते। एडवांस में आने वाले तो कोई पूछेंगे ही नहीं, वो तो जानते हैं कि शरीर छोड़ देंगे तो फिर पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। छोटा बच्चा बनना पड़ेगा तो गर्भ में बहुत दिन रहना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमको तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो शरीर के अंदर रहते हुए ही हम नई दुनिया स्वर्ग में पहुंच जाए, ऐसे नए संगठन में पहुंच जाए जहाँ किसी प्रकार का दुख हमको महसूस हो ही नहीं। तो अगर कोई बाबा से पूछे कि बाबा हम मर जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा झट बता देंगे। क्या बता देंगे? एक तो मरने की बात न हद में आनी चाहिए बुद्धि में, और न बेहद में आनी चाहिए। हद में मरने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि कंचन काया बनानी है एडवांस पार्टी वालों को, सबको पता है। और बेहद में मरने की बात, बेहद में मरने की बात है, निश्चय अनिश्चय में मरना। बाबा के ऊपर निश्चय उठ गया तो जैसे बाप का बच्चा नहीं रहा, और बाबा के ऊपर निश्चय बैठ गया कि हमारा भगवान बाप आया हुआ है, हमको भगवान बाप मिला है, तो क्या हुआ? जैसे बच्चा बन गया, पैदा हो गया। तो मर गया बेहद में अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब बाबा समझ जाते ये दास दासी बनने वाला है, इसलिए पूछ रहा है। अपना पोता मिला आते ही देखो, पूछने की बात ही नहीं, अंत में नंबर वार करमाती अवस्था हो जाएगी। क्या कहा? एक साथ एक जैसी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी किसी की, अंत में नंबर वार कर्मातीत अवस्था होगी। ये है सच्ची सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो तो एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। उन्हें तो वो विनाशी धन कमाने की ताक लगी हुई है। तो तुम क्या करो? तुमको कौन सी ताक लगी रहे? तुमको जो अविनाशी ज्ञान रतन धन है उनकी ही बिजनेस करने की ताक लगी रहे। आप बताओ, ऐसे आदमी जो हद की कमाई में इतना बुद्धि बिजी किए हुए हैं, वो ज्ञान में चल सकेंगे? बाबा कहते हैं ऐसे लोग जो दो दो फोन एक इस कान में लगा हुआ है एक इस कान में लगा हुआ है, न रात है न दिन है, 24 घंटे वो धनी विनाशी कमाई करने में लगे हुए हैं, वो इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, उनकी किस्मत फूटी हुई चलिए। उनसे कहो तो कहेंगे हमको फुर्सत मिला। अरे सच्ची राजाई मिलती है बाप को सिर्फ याद करने से, तुम्हारी विकल्प विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं है। किसकी याद से? जो आठ देवताओं को याद करते हैं, भले उनको सजाएं नहीं खानी पड़ती है आठ देवताओं को, क्या वो कर्मा की अवस्था को सबसे पहले पाते हैं, सजा खाने वाले नहीं होते हैं, फिर भी उनकी याद करने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो हमको समझाया ही नहीं। अभी भी कोई कोई को ये संशय बैठते हैं क्या कि एक बाप थोड़े ही सारी दुनिया को पति से पावन बना देगा, कम से कम और धर्मों की और हेड्स आत्मा की तो होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमने ये बात बाबा से सुनी नहीं। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं, उनकी याद से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो उनको समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है, वो तो पैगंबर होते नहीं है। कौन? जो परमधाम से धर्म स्थापक आते हैं वो कोई पैगाम परमधाम से नहीं लाते। परमधाम में तो निसंकल्प की स्टेज है, वहाँ पैगाम थोड़े देने वाला बाप बैठा हुआ है जो पैगाम देकर के भेज ले। वास्तव में इस समय संगम युग पर तुम बच्चे दुनिया को पैगाम परमात्मा का जाकर के देते हो। तुमको सबको पैगाम देना है, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? एरोप्लेन से भी पर्चे गिराना चाहिए, उसमें लिखो शिव बाबा हमको ऐसे ऐसे कहते, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप और यह भी बाप। वह कह के किसको कहा? जो भविष्य में पार्ट होने वाला है उसके लिए कहा कि वह भी बाप और यह भी बाप, माने इस ब्रह्मा चेतन में जो बैठा हुआ है वो भी बाप। यह बेहद का रूहानी बाप और वो है जिस्मानी बाप, वो भी बेहद का, ये भी बेहद का। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं, बहुत से बच्चों ने कभी देखा भी नहीं है फिर भी लिखते हैं बाबा सब आकर के आपसे हम मिलेंगे, बाबा आकर के हमको इस बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, आगे चल करके बहुतों को साक्षात्कार होंगे। क्या कहा? शुरुआत में तो कम साक्षात्कार हुए सिंध हैदराबाद में, जब लास्ट समय आएगा प्रत्यक्षता का तो उस समय बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं साक्षात्कार होने से किसी को सब गति सदगति मिल जाएगी। साक्षात्कार से किसी को गति सदगति मिलने वाली नहीं है, वर्षा प्राप्त करने के लिए फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़े में खूब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। क्या अभी तो बहुत सवेरे में उठते ही नहीं है, और उठते भी है तो सब उठते ही क्या होता है और जुट के आने शुरू हो जाते हैं, माना पुरुषार्थ करते ही नहीं। आगे चल करके ऐसी हवा बह पड़ेगी कि जो पुरुषार्थ न भी करने वाले होंगे वो भी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे आ सकते हो। क्या कहा? ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं और हम तो अभी नए नए आए हैं, अब हम तो आगे नहीं जा सकेंगे। ये ईश्वरी पढ़ाई की कमाल है। क्या कमाल है? कोई कितना भी लास्ट में आए लेकिन आप लास्ट में आकर के भी वो सबसे आगे जाते हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल में अंत में देखेंगे भी। जो आत्मे अभी एडवांस पार्टी में नहीं दिखाई पड़ रही है और लास्ट में आएगी, और लास्ट में आकर के भी एडवांस में सबसे आगे जाकर सीट वाला बैठा हुआ होगा, भगवान को लाइव कितने काम कर रहे हैं। कुमार कुमारियों ने जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर होकर के अंदर रहे पड़े थे, बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे थे, सामने बैठ कर के पढ़ रहे थे ना, वो एडवांस में आकर के परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने में पीछे रह गए। और जो घरगस्त की टीचर में रहने वाले थे, जो घरगस्त की टीचर में रह करके वो पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो आगे चले गए। एकलव्य का मिसाल, एकलव्य का क्या मिसाल, वो बाहर में रह करके उसने विद्या सीखी और पांडवों को डायरेक्ट पढ़ाई मिल रही थी, महल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ रहे थे। लेकिन पांडव द्रोणाचार्य जी जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उस बाण विद्या में सीखे नहीं हो सके, और एकलव्य बहुत सीखा निकल गया। नाम उसका क्या रखा, एकलव्य। सीखा जाने का कारण क्या बताया, नाम है काम के आधार पर, कौन सा काम, एक से लव था उसका, तो एक से प्यार जो है वो बहुत आगे बढ़ाई देता है। व्यभिचारी याद नहीं होनी चाहिए, व्यभिचारी प्यार नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनको प्यार किया, थोड़ा उनको प्यार किया, थोड़ा इसको याद किया, थोड़ा उसको याद किया, नहीं, एक भरोसो एक बले एक आत्मविश्वास, जो भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं, ऐसी जो अभिविचारी याद है वो तीव्र गति से पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो बाप कहते हैं मेकअप कर लो, यहाँ आकर के कमाई करने लग जाओ, बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे, ये तो बरोबर पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि भगवान बाप आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति माता पिता बाप पदा का याद किया, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।
तो जब एक आत्मा का भी इतना प्रभाव कर सकता है तो जब हम सही होंगे।